स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 26 दिसंबर दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश के बांदा में मामूली विवाद पर दलित की हत्या, दो लोग गिरफ्तार।
विद्यालय से थोड़ी ही दूर पर वो गांव है, ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है, पुलिस महकमे को छोड़ कर ना तो SDM वहां पहुंचा, यहां लगा तो जिला अधिकारी वहां पहुंचा।
पत्नी के पहनावे पर सोशल मीडिया में की गई तल्ख टिप्पणियों की क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने की आलोचना। वर्षांत कार्यक्रमों की कड़ी में आज सुनिए हिंदी के मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव पर प्रस्तुति, जिन्होंने अपने लेखन के जरिए दलित और महिला विमर्श को एक नया आयाम दिया था।
हमारा साहित्य सिर्फ कुछ एलिटिस्ट किस्म के बहुत मध्यवर्गीय लोगों का साहित्य रहा है।
लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार वात्सल्य राय से। उत्तर प्रदेश की पुलिस के मुताबिक बांदा जिले में दलित समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य अभियुक्त समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांदा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह घटना रविवार की है। उन्होंने बताया कि जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हुए हैं, बाकी अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। भारत ने आज लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल Agni-5 का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। Agni-5 को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं BBC संवाददाता अजय शर्मा।
Agni-5 का परीक्षण उड़ीसा के तट पर किया गया। ये मिसाइल 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी है। इसका वजन करीब 50 टन है। ये 1 टन से ज्यादा वजन का परमाणु हथियार ले जा सकती है। नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन के मामलों में Agni-5 नई तकनीक से लैस है। ये अग्नि सीरीज की सबसे उन्नत मिसाइल है।
जानकारी दे रहे थे BBC संवाददाता अजय शर्मा। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। रूस के मुताबिक कल हुए विमान हादसे में मारे गए 11 लोगों के शव मिल गए हैं और उन्हें मॉस्को लाया गया है। सीरिया जा रहा यह विमान कल काला सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई थी। रूस के परिवहन मंत्री का कहना है कि हादसे की वजह पायलट की गलती या फिर तकनीकी खामी हो सकती है। बाकी शवों की तलाश के लिए अभियान जारी है। रूस में आज एक दिन का शोक मनाया जा रहा है। तुर्की ने सीरिया में जारी अभियान के लिए अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन की हवाई सेना से मदद देने को कहा है। सीरिया में बीते कई हफ्तों से तुर्की की सेना की मदद से विद्रोही लड़ाके अलबाब शहर को इस्लामिक स्टेट से अपने अधिकार में लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये इलाका इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों का गढ़ बना हुआ है। यहाँ करीब 4 महीने से संघर्ष जारी है। ब्रिटिश गायक जॉर्ज माइकल के साथी कलाकार और फैंस उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। माइकल का 53 साल की उम्र में निधन हो गया था। एक गायक के तौर पर वो दुनिया भर में मशहूर थे। उनके लाखों की संख्या में रिकॉर्ड बिके। मैडोना और सर एल्टन जॉन समेत कई कलाकारों ने उनके निधन पर दुख जताया है और एक कलाकार के तौर पर उनकी तारीफ की है। संगीतकार पॉल यंग के मुताबिक माइकल की आवाज में कुछ खास था। उन्होंने कहा,
People connected to in a very big way. I think the best way to say it is when he sang out, he sang straight into the words.
लोगों का उनसे गहरा जुड़ाव था। शब्द मानो उनके मुंह से झड़ते थे। दूसरे गायक के कार्यक्रम में तकनीक हावी रहती थी, लेकिन जॉर्ज के साथ ऐसा कभी नहीं होता था। वो हमेशा गाने के शब्दों को अहमियत देते थे। मुझे याद है एक बार उन्होंने बिना किसी वार्म अप के गाना गाया था। उन्होंने उसी तरह गाना गाया जैसे चिड़िया गाती हैं। ये यकीनन अद्भुत था। ये थे पॉल यंग के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। थाईलैंड की पुलिस ने सरकारी कंप्यूटर और वेबसाइट हैक करने के संदेह में 9 लोगों को हिरासत में लिया है। हैकिंग कथित तौर पर इंटरनेट इस्तेमाल करने को लेकर बने नए कानून पर विरोध जाहिर करने के लिए की गई थी। थाईलैंड की संसद ने इसी महीने की शुरुआत में साइबर अपराध कानून में संशोधन किया था। इसके विरोध में हैकरों के एक समूह ने सरकार की कई वेबसाइट बंद कर दी थी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अधिकारियों का कहना है कि उत्तरी कीवू प्रांत में हुए 2 अलग-अलग हमलों में कम से कम 35 लोग मारे गए हैं। रविवार को हुतू समुदाय के लोगों पर विरोधियों की ओर से हुए हमले में 13 आम लोग मारे गए थे। हाल के दिनों में कांगो में सुरक्षा से जुड़ी स्थितियां खराब हुई हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी अभी समाचारों में सुना, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में मामूली से विवाद में दबंग किस्म के कुछ लोगों ने दलित समुदाय के एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर दी है। गोलीबारी में दो लोग जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन नामजद अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने इस मामले को लेकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अन्य अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। पूरी जानकारी के साथ लखनऊ से समीरात्मज मिश्र।
बांदा जिले के तिंदवारी इलाके के महुई गांव के रहने वाले लल्लू ने नहीं सोचा होगा कि मामूली कहा सुनी उनकी मौत की वजह बन जाएगी। विवादित जमीन पर लगे पेड़ पर दातून तोड़ने पहुंचे लल्लू की पड़ोस के लोगों से कहा सुनी हुई, फिर गाली गलौच और उसके बाद उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी गईं। बांदा के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर श्रीपति मिश्र बताते हैं,
ये दोनों पड़ोसी हैं, सामने एक तालाब है, उसपे कब्जे को लेके जो मृतक है वो दातून तोड़ने के लिए गया था, जिसपे जो जिमगर है उन्हें बना दिया, क्योंकि दोनों उसे अपना अपना बताते हैं। इसके वहाँ झगड़ा हुआ, गाली गलौज हुआ और ये जो जिम है इन्होंने गोलियां चलाई, जिसमें तीन लोग घायल हुए। उन तीनों को हॉस्पिटल लाया गया, उनमें से एक आदमी की डेथ हो गई। इसमें पांच अभियुक्तों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई दर्ज कराई गई है, जिनमें से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर दिया गया है और जो असलाह जिससे फायर हुआ था असलाह भी किया।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त दबंग किस्म के लोग हैं और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जे को लेकर मृतक के परिवार से इनका विवाद था। उन्होंने बताया कि मुख्य अभियुक्त विश्राम सिंह की बंदूक का लाइसेंस पहले भी निरस्त हो चुका है। इस गोलीबारी में दो अन्य लोग भी घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और घटना की सूचना मिलते ही खुद पुलिस अधीक्षक भी तत्काल मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही बताया है। मृत व्यक्ति लल्लू के अंतिम संस्कार में पहुंचे बीएसपी नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गयाचरण दिनकर कहते हैं कि न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा गांव दहशत में है।
ये बड़ी घटना हो गई, मुख्यालय से थोड़ी ही दूर पर वो गांव है, ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां नहीं पहुंचा है, पुलिस महकमे को छोड़ करके ना तो एसडीएम वहां पहुंचा, यहां लगा तो जिला अधिकारी वहां पहुंचा। जनसंख्या में तो आया है, लोगों ने बताया जिसने हत्या की है, मेन जो अभियुक्त है वो तो हार्ड क्रिमिनल था और सजायाफ्ता भी है, जिला बदर भी हो चुका था और बराबर वो पुलिस चौकी में बैठता उठता रहा। ये तो बहुत बड़ी गुंडागर्दी है और जो जानकारी मिली है जो ये कातिल लोग हैं, का पूरे गांव में नहीं आसपास के इलाकों में भी भय है, दहशत है।
पुलिस का कहना है कि फिलहाल गांव में शांति है और जल्द ही बचे हुए तीन अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी लखनऊ।
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने उनकी पत्नी के कपड़ों को लेकर उन्हें ट्रोल करने पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की आलोचना की है। रविवार को शमी ने फेसबुक और ट्विटर पर अपनी पत्नी हसीन जहां के साथ तस्वीरें पोस्ट की थीं, लेकिन कुछ लोगों को उनकी पत्नी के कपड़े पसंद नहीं आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कहकर अपनी प्रतिक्रिया दी कि वो सही तरीके से इस्लाम का अनुकरण करें। कुछ ने मोहम्मद शमी को ये सलाह तक दे डाली कि उनकी पत्नी हिजाब पहने और शालीन कपड़े पहने, लेकिन कई लोगों ने शमी का समर्थन भी किया है। दिल्ली से विनीत खरे की रिपोर्ट।
मोहम्मद शमी ने सोमवार को ट्वीट किया कि उन्हें पता है कि परिवार के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस मसले पर हमने कुछ मुस्लिम महिलाओं से बात की। नाजिया अयूबी जामिया विश्वविद्यालय में कानून की छात्रा हैं।
सोसाइटी और पीपल को आई थिंक दे शुड डू देयर ओन बिजनेस। उसकी मर्जी है कि वो किस तरीके से तैयार हो, वो किस तरीके से अपने को पोर्ट्रे करे। सोसाइटी को ये बात पता होनी चाहिए कि उनकी लिमिट कहाँ तक है, और मेरे ख्याल से इसको कंडम करना चाहिए, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि जहाँ तक इस्लाम के वैल्यूज की जो ये बात करें, मैंने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन किसी वुमेन को इस तरह से डिफेम करना, इस तरीके से उन पे कमेंट करना, ये जायज है इस्लाम में भी।
तलहा रहमान जामिया विश्वविद्यालय से PhD कर रही है, विषय है इस्लामिक स्टडीज कंटेम्प्रेरी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन इस्लाम।
भला इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, इस पे भी सवाल बहुत प्रॉब्लमेटिक है और कहीं ना कहीं ये एक रेप कल्चर को भी बढ़ावा देता है, क्योंकि ये माना जाता है कि माने महिलाएं या उनके कपड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेप जब होता है या इस तरह की चीजें। तो कपड़ों पे जो ये पूरा जो एक तरह से हम पूरी तरह से महिलाओं को उनके बॉडी और सिर्फ उनके कपड़ों में ही नापते हैं, ये पूरा एक माने फिर से मैं वही बात कहूंगी कि महिलाओं को राधर देन अ पर्सन उनको एक चीज बना दिया जाता है, वो इंसान नहीं रहते, उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन हो जाता है।
संबुल मशहदी छात्रा हैं। मैंने उनसे पूछा कि उन पर कपड़ों या फिर सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने को लेकर कितना दबाव रहता है।
घर में ही पेरेंट्स मेरे मुझे बोलते हैं कि लड़कों के साथ ज्यादा फोटो मत डालना, कोई ऐसे वैसे कपड़े पहन के फोटो मत डालना। जितनी भी फोटोज डाली हैं वो अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है तो रिलेटिव्स कॉल कर देते हैं पेरेंट्स को कि आपने देखा ऐसी फोटो डाली हुई है सुम्बुल ने, या जो भी गॉसिप, उसकी वजह से फोटोग्राफ्स लेनी पड़ जाती हैं फेसबुक से बाहर।
और आपने डिलीट की हैं फोटोज?
हाँ, मैंने डिलीट की हैं, मैंने हाइड करी हैं। मेरे टाइमलाइन में फोटोज हैं जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ, प्राइवेसी सेट कर दी है उसमें। और फिर अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, जामिया में मैंने बहुत मॉरल पुलिसिंग देखी है कपड़ों को लेके। अभी तो थोड़ा सा बेटर हुआ है, पहले जब मैंने 2010 में जामिया ज्वाइन किया था उस टाइम पे तो बहुत कॉमेंट्स होते थे कपड़ों को लेके। जैसे कोई निकल के जा रहे, अगर किसी ने छोटे कपड़े पहने हैं या थोड़े टाइट कपड़े पहने हैं तो कमेंट्स आ रहे हैं कि इन लड़कियों की वजह से तो हमारा रोजा मुकरू हो जाता है, पता नहीं कैसे कपड़े पहन के आती हैं, रोजा खत्म, मतलब खराब हो जाता है।
अच्छा, इनवैलिड। उधर गीतकार और कवि जावेद अख्तर ने ट्वीट किया, मिसेस शमी ने जो कपड़े पहने हैं वो बेहद शालीन और सलीकेदार हैं, अगर किसी को इससे समस्या है तो वो बीमार दिमाग का है। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने शमी के खिलाफ सोशल मीडिया कमेंट्स को शर्मनाक बताया। गायक और एक्टर फरहान अख्तर ने ट्वीट किया, डियर मिसेस शमी, हम कभी नहीं मिले हैं लेकिन मैं कहूंगा कि आप गाउन में शानदार लग रही थी, आपके पति को मेरा सलाम। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
बीबीसी हिंदी की वर्षांत पेशकश में आज बात हिंदी के मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव की। राजेंद्र यादव नई कहानी के दौर के प्रमुख कहानीकारों में थे। उन्होंने जहां लक्ष्मी कैद है और टूटना जैसी कई प्रसिद्ध कहानियां और सारा आकाश उखड़े हुए लोग, शह और मात जैसे उपन्यास लिखे। हंस पत्रिका के संपादक के रूप में उन्होंने स्त्री और दलित विमर्श को एक नई पहचान और शक्ति दी और अपनी बेबाक टिप्पणियों और अलग अंदाज के लिए हमेशा चर्चा में रहे। राजेंद्र जी ने हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल को एक इंटरव्यू दिया था, उसी इंटरव्यू पर आधारित पेशकश सुनिए विदित मेहरा से।
ये संगीत है साल 1969 में बनी बासु चटर्जी की फिल्म सारा आकाश का। इस फिल्म में एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने आजाद भारत में सपने देखे थे, कुछ करने के, कुछ पाने के। आश्वासन था कि अगर जज्बा हो तो उसके सामने पाने को सारी दुनिया और सारा आकाश है, लेकिन जीवन की परिस्थितियों में वो इस कदर घिर जाता है कि पारिवारिक जीवन की झंझावात में उसके सपने टूट कर बिखर जाते हैं। ये फिल्म आधारित थी हिंदी के मशहूर साहित्यकार राजेंद्र यादव के पहले उपन्यास सारा आकाश पर, जो खूब चर्चित हुई थी। राजेंद्र यादव हिंदी की नई कहानी की धारा के प्रमुख साहित्यकारों में थे, जिन्होंने अपनी कहानियों से तत्कालीन समाज और उसमें संघर्ष करते व्यक्ति और उसके भीतर के द्वंद्व को एक नई अभिव्यक्ति दी थी। 28 अगस्त 1929 को जन्मे राजेंद्र जी का विद्यार्थी जीवन आगरा में बीता था। रेहान फजल के साथ साक्षात्कार में अपने उन दिनों के बारे में राजेंद्र जी कहते हैं,
उन दिनों तो हम लोग तो अच्छे विद्यार्थियों में माने जाते थे और चूंकि थोड़े से सजग और उस तरह के थे तो मेरा ख्याल है कि हम तो काफी सीरियस रहने वालों में थे, लेकिन जैसे स्टूडेंट्स होते हैं सब जगह, वो माहौल उतना राउडी तो नहीं था उस समय, लेकिन था, एक खुला वातावरण था, मिलना जुलना था, नए नए हम लोगों का जो को एजुकेशन में साथ साथ पढ़ना हमारे लिए एक बड़ी बड़ी थ्रिलिंग चीज़ थी। आगरा कॉलेज, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, हिंदुस्तान के 2 या 3 सबसे पुराने कॉलेजेस में हैं, तो उसमें लेकिन ज़्यादातर लड़कों का कॉलेज था, लड़कियाँ कोई बहुत कम होती थी, लड़कियों का ख़ासतौर से कॉलेज को एजुकेशन वाला सेंट जॉन्स कॉलेज था। तो इन दोनों कॉलेजेस के बीच एक खास तरह का प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा बनी रहती थी। हर एक आगरा कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की इच्छा होती थी कि वो घूमने टहलने, लड़कियों को देखने वगैरह, मिलने सेंट जॉन्स कॉलेज जाए।
छात्र जीवन में ही परिपक्व हो चुके राजेंद्र यादव ने अपनी साहित्यिक यात्रा में कई चर्चित कहानियां और उपन्यास तो लिखे ही, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा प्रेमचंद द्वारा शुरू की गई हंस पत्रिका को दोबारा से शुरू करना। ये पत्रिका 1953 में बंद हो चुकी थी और राजेंद्र जी ने 1986 में उसे दोबारा शुरू किया। इस पत्रिका को लेकर उनमें एक अलग तरह का जुनून था और उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों और स्त्रियों से जुड़े सवालों को हंस के जरिए एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उन पर संस्मरण लिखने वाली मैत्रेयी पुष्पा कहती हैं,
और मैं उनके लेखन से बजाय कहानी और उपन्यासों के मुकाबले मैं उनके उस लेखन से ज्यादा प्रभावित हुई जो था कांटे की बात, जो उन्होंने विमर्श चलाए, है ना। हम स्त्री हैं तो उन्होंने लिखा आदमी की निगाह में औरत। इस तरह के जो हंस जब किया तो इस तरह के विमर्श चलाए, वो बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आगे चल के देखिए उनका कितना महत्व समझ में आएगा लोगों के। खैर, उपन्यास तो सब लिख लेते हैं, सभी लिखते हैं, तरह तरह से लिखते हैं। उन्होंने भी लिखे समाज के लिए, जो सामाजिक जो रीतियाँ हैं या जो पाखंड हैं, जो उनके या राजनीतिक वो राजनीतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनके जो पसंद आती हैं, ठीक है, नहीं पसंद आती उनके खिलाफ लिखते हैं, ये तो बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन इस तरह का राजन जी का जो अवदान था समाज के लिए, साहित्य के लिए, ये बहुत कम लोग कर पाते। मेरे ख्याल में ये जो समय पलट डाला उन्होंने, साहित्यिक समय पलट डाला, सामाजिक समय पलट डाला, वो तो बिरले होते हैं, वो राजन यादव।
दलितों और स्त्रियों के संदर्भ में लिखते हुए राजेंद्र जी कई बार ऐसी बातें कह जाते थे जिन पर विवाद हो जाता था। एक बार उन्होंने राम कथा के प्रसंग में हनुमान को पहला आतंकवादी कह दिया था, जिस पर काफी हंगामा बरपा था और मुकदमे तक हो गए थे।
मेरे ऊपर उस हनुमान को लेकर चार जगह से लगभग मुकदमे, दो बाकायदा मुकदमे हैं और दो जगह से थ्रेट है। दिक्कत यह है कि जितने ये धर्मांध किस्म के तालिबान होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं, अपनी तरह से सोचते नहीं हैं। जहाँ मैंने लिखा था वहाँ ये लिखा था कि रावण के दरबार में हनुमान पहला आतंकवादी था, अंग्रेजों की निगाह में भगत सिंह आतंकवादी था। अगर हनुमान आतंकवादी नहीं था तो क्या वो फूलमालाएं लेकर रावण के यहाँ गया था, या रावण ने उसे बुलाया था पालकी भेजकर? वो राम की तरफ से वहाँ पर एक तरह से कहना चाहिए कि ये बताने के लिए कि भविष्य तुम्हारा ये है, ये शिक्षा देने के लिए गया था। तो इन अनपढ़ों ने उसके पूरा नहीं पढ़ा उसे।
राजेंद्र जी हंस में अपने संपादकीय के जरिए समाज में हाशिए के लोगों की बातें करते थे और उन लोगों की बात करते थे जिन्हें साहित्य में वैसा स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और जब उन्होंने ऐसे लोगों के पक्ष में ऐतिहासिक पुस्तकों से उदाहरण देकर बात की तो उन्हें कई बार विवादों का सामना करना पड़ा।
देखिए, मुझे मेरे ऊपर यारो पता नहीं कैसे चश्मा हो गया है कि मुझे विवाद प्रिय है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ है जिंदगी में और साहित्य में जिसको दबा दिया गया है, बहुत कुछ ऐसा है जो कहाँ जाना चाहिए था। हमारा साहित्य सिर्फ कुछ एलिटिस्ट किस्म के बहुत मध्यवर्गीय लोगों का साहित्य रहा है। हमारा इतिहास राजा महाराजाओं का इतिहास रहा है, उसमें जो 80% छूट गया है, जो हाशिए के लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती, स्त्रियाँ थे, दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, और मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यक थे। अगर मैं उनकी बात कहता हूँ और अगर ये कहता हूँ कि ये हम जो कुछ पढ़ते रहे वो बहुत एकहरा, सतही और बायस्ड है, तो उसको लेकर विवाद होता है।
राजेंद्र यादव मानते थे कि एक निश्चित ढर्रे में रहकर जीवन जीना दरअसल इंसान की साहित्यिक रचनात्मकता को कुंद करता है और शायद इसीलिए वो नौकरी के पक्ष में नहीं थे।
देखिए, लिखना मैंने एमए किया था 51 में, मैंने टॉप किया था एमए में, हिंदी में था। हमारे एक गुरुजी थे जो पंडित जगन्नाथ तिवारी, उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ पढ़ाऊँ। उस समय आगरा कॉलेज में अध्यापक होना एक खासा प्रेस्टीजियस काम था, लेकिन हमारी दो किताबें, तीन किताबें छप चुकी थी, कहानियाँ छप चुकी थी, हम अपने को कहानीकार और साहित्यकार मानने लगे थे और उस तरह की चीज़ें पढ़ने लगे थे, देशी विदेशी। तो हमको लगता था कि नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो नौकरी है वो आदमी को एक तो एक रिपीटेटिव कार्यक्रम आदमी की मौलिकता को कुंद करता है, दूसरा कहीं ना कहीं कोई दबाव ऐसा होता है जो आपकी स्वतंत्रता पर, अभिव्यक्ति पर अंकुश लगाता है।
चर्चा और विवादों में रहने वाले राजेंद्र यादव ने हिंदी की मशहूर लेखिका मन्नू भंडारी से शादी की थी। मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी पर एक फिल्म भी बनी थी समय की धारा, जो काफी चर्चित रही थी। लेकिन मन्नू भंडारी राजेंद्र जी के जीवन में आने वाली अकेली महिला नहीं थी जिनसे उन्होंने प्रेम किया था। उनसे पहले वो दो अन्य महिलाओं के प्रति भी आकर्षित रहे थे। मीता जी से उनकी मुलाकात आगरा में हुई थी।
मैं ट्यूशन पढ़ाया था उसे, और जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा चमत्कृत हुआ था वो ये कि एक पन्ना पढ़वाता था मैं उसे और किताब वापस रख देता था। वो उसे वर्बेटम सुना देती थी, शब्द शह जो उसने सुना है या पढ़ा है, दोनों हाथों से लिखती थी। और भयंकर आत्मविश्वास, क्योंकि घर में सबसे बड़ी थी। और फिर संयोग से हुआ ये कि कॉलेज की लड़कियों कॉलेज की प्रिंसिपल हो गई। ये अधिकार की जगह रहने में और उस आत्मविश्वास से मैं कहीं डरता था। मुझे लगता था कि मिलने बीच बीच में मिलना ठीक है, लेकिन अगर मैं साथ रहा तो शायद इतनी डोमिनेटिंग कहूँ मैं महिला के साथ निर्वाह करना मुश्किल होगा, क्योंकि जो सिर्फ अपनी स्वेच्छा से और अपनी इच्छा से और अपने हिसाब से चीजों को करती हैं।
राजेंद्र जी मीता के व्यक्तित्व से प्रभावित तो थे, लेकिन अपने संबंधों को किसी अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं जुटा सके। उन पर संस्मरण लिखने वाली मैत्रेयी पुष्पा बताती हैं कि मीता का राजेंद्र जी के जीवन में असल स्थान क्या था। ये तब पता चला जब 1998 में वो बीमार पड़े। उन्होंने फोन करवा कर मीता जी को दिल्ली बुलवाया। वो आई और उन्होंने राजेंद्र जी का भरपूर ख्याल रखा।
तो वो आई और उन्होंने, मैंने ये किताब में लिखा है, उन्होंने इनके मन की सब्जी, इनके मन की खुद अपने हाथों सब, हालांकि नौकर था वहाँ बनाने को, सब कुछ बनाई। मेरे ख्याल में 15 या 20 दिन रही इनके पास। जब जाने को हुई तो राजेंद्र जी बहुत दिल टूटा राजेंद्र जी का। मुझसे बोले डॉक्टर ने कहो ना कि कुछ दिन और रह जाए। तो मैंने कहा कि अच्छा मैं कहती हूँ, मैंने कहा कुछ दिन और रह जाइए ना आप। तो एक गाना गुनगुनाया करती थी वो कि इतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे। ये गाना मेरे ख्याल में चित्रलेखा से फिल्म था।
मैत्रेयी पुष्पा के मुताबिक राजेंद्र जी उनके जीवन में आने वाली महिलाओं में मीता को ही ढूंढते रहे, क्योंकि वो उन्हीं से सच्चा प्रेम करते थे और इस बात से परेशान रहे कि उन्होंने तो मन्नू भंडारी से शादी कर ली लेकिन मीता ने कभी शादी नहीं की।
राजेंद्र जी उसी मीता के खोज में, जो खो गई थी उनसे, और उन्होंने शादी की थी मन्नू भंडारी से, लेकिन मीता खो गई थी उनसे। बार बार उन्होंने मीता को पाना चाहा, बार बार। कुछ गिल्ट भी था अंदर कि मैंने शादी कर ली, मीता ने नहीं की। उसका वो ऐसे ही बूढ़ी हो गई, उन्हीं के प्रेम में ही बूढ़ी हो गई। तो ये गिल्ट भी था, ये चाहना भी थी कि मीता मुझे नहीं मिली। हर स्त्री में जिनसे भी उनके संबंध रहे, पास के या दूर के, उसमें उन्होंने मीता को ही खोजा। मुझे ऐसा लगा, लोगों का कुछ भी हो सकता है नजरिया, लेकिन मेरा नजरिया ये रहा कि वो मीता की खोज में ही इधर उधर भटके, तबाह भी हो गए और बर्बादी की कगार पे आ गए, लेकिन मीता की खोज पूरी नहीं हुई।
मन्नू भंडारी से मुलाकात से पहले राजेंद्र जी के करीब आने वाली दूसरी महिला थी हेमलता जी। राजेंद्र जी ने हेमलता जी के साथ अपने संबंधों को याद करते हुए कहा था कि वो अपनी खुद की कमियों की वजह से हेमलता के साथ संबंधों को आगे नहीं बढ़ा सके।
मैंने बताया था वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल घराने की महिला थी। सारा आकाश से हमारी उनकी दोस्ती शुरू हुई। बहुत दिनों तक हम मिले नहीं। जैसा मैंने शुरू में भी लिखा है कि शायद इसके पीछे हो सकता है कि मेरी अपनी इनफीरियरिटी हो। ये मेरा जो एक्सीडेंट वाला घटना, इसको लेकर मैं नहीं चाहता था कि उन्हें धक्का लगे मुझे देखकर। वो शायद इसीलिए हम लोग बचते रहे, साल डेढ़ साल हम लोग नहीं मिले। पत्रव्यवहार बहुत निरंतर था, और चूंकि वो दुनिया भर में घूमती थी, आज कलकत्ता, कल बम्बई, दार्जिलिंग, कभी कहीं कभी कहीं। और नियम था कि वो या तो चिट्ठी लिखेंगे हफ्ते में एक बार या टेलीफोन पर बात करेंगे। वो अजीब पागलपन का और रोमांटिक था जिसको देखा नहीं था हमने, लेकिन कहीं उनको हताश, हमारी मनु से जब शादी हुई तो थोड़ी निराशा हुई होगी, वो अमेरिका चली गई एक कोर्स करने के लिए। बाद में हमारा बहुत दिनों तक पत्रहार नहीं हुआ, शी डिडंट अटेंड माई मैरिज बिल्कुल, और उस पर कोई संदेश तक उन्होंने नहीं भेजा। आप सोचिए जो हफ्ते में एक बार फ़ोन करती थी, चिट्ठी, सैकड़ों चिट्ठियाँ आज भी मेरे पास हैं। तो इस तरह से अब ये कहूँगा कि कुछ घाव ही हैं जिंदगी में, जो तस्वीरें बोता चंद सुने को खतूत।
मीता और हेमलता जी के साथ राजेंद्र जी के संबंध आगे ना बढ़ सके, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रेम तक तो ठीक है, लेकिन साथ रहकर जीवन का निर्वाह करना संभव नहीं हो सकेगा। लेकिन कलकत्ता में जब उनकी मुलाकात मन्नू भंडारी से हुई तो उनमें उन्हें जीवन साथी बनने की संभावना नजर आई।
मन्नू भंडारी से तो ऐसा हुआ, कलकत्ते में था तो मेरे मित्र थे एक खेतान, वो कॉलेज के उस स्कूल के चेयरमैन थे जहाँ मन्नू पढ़ाती। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि वहाँ की लाइब्रेरी को मैं अपडेट कर दूँ, मैं वहाँ लिस्ट किताबें देखने और लिस्ट बनवाने, वो संयोग से मन्नू उसकी इंचार्ज थी। तो हम लोगों ने किताबें छांटना तो अलग किया, आपस में किताब लिखने की बात करते रहे, फिर एक दूसरे के निकट आए, फिर कलकत्ते में मिलना जुलना हुआ ऐसे ही। फिर मुझे लगा कि शायद मन्नू के साथ मेरा निर्वाह हो सकेगा।
लेकिन मन्नू भंडारी के साथ हुआ प्रेम और शादी भी चिरस्थायी नहीं बन सके, और जीवन में वो मोड़ भी आया जब दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। खुद राजेंद्र यादव का मानना था कि वो अच्छे पति नहीं थे।
मेरा ख्याल है कि मैं पति बहुत अच्छा नहीं हूँ। दिक्कत यह है कि लिखने की दुनिया ने और पढ़ने की दुनिया ने मुझे इतना अपने साथ कैद कर रखा है कि मैं दूसरों की बातें सोच नहीं, दूसरों के लिए बहुत फीलिंग मेरे मन में नहीं, सूख गई है। ठीक है, सहानुभूति महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए अगर मुझे अपना रूटीन एक दो दिन से ज़्यादा बदलना पड़े तो मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत ख़राब पति हूँ।
राजेंद्र यादव अपनी वैवाहिक जिंदगी में भले ही सफल ना रह सके, लेकिन साहित्य की दुनिया में उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया। जब तक जीवित रहे, साहित्य को एक अलग दिशा देने का प्रयास करते रहे। जीवन के सांध्य काल में हंस का संपादन और साहित्यिक विमर्श का हिस्सा बनने के अलावा उन्होंने एक ही शौक पाला, और वो था बैठकबाजी का, जिसमें दोस्तों के साथ कुछ सुकून के पल गुजारते हुए भी वो समय समाज और साहित्य पर ही गंभीर चर्चाएं किया करते थे।
पहले जो भी रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से, 10-12 साल से या 15 साल से कहना चाहिए, दिल्ली आने के बाद, हंस निकालने के बाद, मैं कहूँगा कि मेरा एकमात्र शगल बैठकबाजी है। अब चूंकि मैं मयूर विहार चला गया हूँ तो मयूर विहार के लोग ज़्यादा हैं। अब दुर्भाग्य या संयोग से ये कहिए कि मैं अकेला हूँ घर में, नौकर है, सबके अपने परिवार हैं, किसी की बीवी उन्हें नहीं दारू पीने देती, सब लोग इस चक्कर में रहते हैं कि मेरे यहाँ आ जाएं। तो लोग ये समझते हैं कि मैं बहुत कोई पैसे वाला अंधा रोज नवाबों की तरह से पार्टियाँ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। बड़ा सब पंचायती काम है, वो जो हैं सिर्फ कभी कभी तो मुझे पानी और गिलास ही का इंतजाम करना पड़ता है, बाकी सब लिए चले आते हैं। मेरा नंबर 2-3 महीने बाद आता है, और उसमें मेरा ख्याल है कि वी सेल्डम टॉक नॉनसेंस, यानी अगर उनकी रिकॉर्डिंग की जाए तो मेरा ख्याल है कि सम ऑफ द फाइनेस्ट टॉक्स या डिस्कशंस हमारे घरों में हुए हैं। तो मेरा शौक तो ये है।
जीवन भर दलितों और स्त्रियों को साहित्यिक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास करने वाले राजेंद्र जी का 28 अक्टूबर 2013 को 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मैत्रेयी पुष्पा मानती हैं कि नए लेखकों को प्रोत्साहित करने वाला और उंगली पकड़कर उनका मार्गदर्शन करने वाला राजेंद्र यादव जैसा शख्स शायद ही कोई दूसरा होगा। विदित मेहरा, BBC दिल्ली।
कार्यक्रम के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक बांदा जिले में दलित समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या के मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भारत ने आज लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस के मुताबिक कल हुए विमान हादसे में मारे गए 11 लोगों के शव मिल गए हैं और उन्हें मॉस्को लाया गया है। रूस में आज एक दिन का शोक मनाया जा रहा है। तुर्की ने सीरिया में जारी अभियान के लिए अमेरिका की अगुवाई वाले गठबंधन की हवाई सेना से मदद देने को कहा है। BBC समाचार।
इसी के साथ दिनभर की यह सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। कार्यक्रम के दौरान स्टूडियो संचालन किया तिलक तिलक राज भाटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।